old Shanti. आज अव्यक्तवाणी है 14/6/98 की। जो पहले 8/1/79 को चल चुकी थी, हेडिंग दिया है संगम युग में समानता में समीप को। भविष्य संबंध में भी समीपात में होंगी। इसकी समानता में समीप बाप के पुरुषार्थ के समीप होंगे, पुरुषार्थ की समानता में समीप होंगे, वो भविष्य के जन्मों में भी संबंध में समीप आवेंगे। आज बाप दादा चारों ओर की विदेशी और देशवासी बच्चों को दूर होते भी सन्मुख देख सर्व बच्चों को, उसमें भी विशेष रूप में विदेशी बच्चों को एक बात के लिए विशेष शाबाशी दे रहे हैं। इस प्रकार के विशेष बच्चों को शाबाशी दे रहे हैं। विशेष रूप में विदेशी बच्चों को हैं दूर, दूर देश में बैठे हुए हैं, लेकिन उनको सन्मुख देख करके शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि कोने कोने में बाप के छिपे हुए बच्चों ने बाप को पहचान निश्चय से बहुत अच्छा जंप लगाया है। भिन्न धर्म के पर्दे के अंदर होते हुए भी सेकंड में पर्दे को हटाए, बाप के साथ सहयोगी आत्माएं बन गए। लगन में आए हुए विघ्नों को भी सहज ही पार कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा विशेष शाबाशी देते हैं। ऐसी हिम्मत रखने वाले बच्चों के साथ बाप दादा का सदा सहयोग है। कैसे बच्चों के साथ? जो लगन में आए हुए विघ्नों को सहज पार कर रहे हैं। हर बच्चे के साथ साथ हर कर्म में बाप का साथ है। सभी बच्चों को बाप दादा बुद्धि रूपी गिफ्ट, लिफ्ट की गिफ्ट दे रहे हैं। माना बाप दादा द्वारा बुद्ध रूपी लिफ्ट की गिफ्ट मिली हुई है। गिफ्ट तो सबको मिली हुई है। साइक गिफ्ट, बुद्धि रूपी लिफ्ट की गिफ्ट सबको मिली हुई है, लेकिन उसको कार्य में लाना हर एक के ऊपर है। बहुत पावरफुल और बहुत सहज लिफ्ट की गिफ्ट है। सेकंड में जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। ये वंडरफुल लिफ्ट तीनों लोकों तक ले जाने वाली है। जैसे ही स्मृति का स्विच ऑन किया तो एक सेकंड में वहां पहुंच जाएंगे। लिफ्ट द्वारा जितना समय जिस लोक का अनुभव करना चाहो उतना वहां स्थित रह करके कर सकते हो। इस लिफ्ट को विशेष रूप से यूज करने की विधि है, अमृत वेले केयरफुल बन करके स्मृति के स्विच को यथार्थ से सेट करो तो सारा दिन ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? बुद्धि के गिफ्ट की लिफ्ट चलती रहेगी। सेट करना तो आता है ना, अच्छी तरह से अभ्यासी होना। दिव्य बुद्धि रूपी लिफ्ट सारे दिन में कहां अटकती तो नहीं है। अथॉरिटी होकर के इस लिफ्ट को कार्य में लगाने से कभी भी ये लिफ्ट धोखा नहीं देगी। वर्तमान संगम युग की लिफ्ट यह बुद्धि की लिफ्ट है। साथ साथ भविष्य के स्वर्ग के राज्य की गिफ्ट भी बाप दादा अभी देते हैं। स्वर्ग के गेट की चाबी बाप दादा बच्चों को ही देते हैं और चाबी है अधिकारपन अर्थात अधिकारी बनना। अधिकार की चाबी से गेट खुला हुआ है तो नंबर वन अधिकारी कौन बनता है? अर्थात अधिकार द्वारा गेट पहले कौन खोलता है उसको भी अच्छी तरह से जानते हो। कौन खोलता है? अधिकार द्वारा गेट कौन खोलता है उसको अच्छी तरह से जानते हो। कौन खोलता है? किसका अधिकार है गेट खोलने का? लेकिन अकेले नहीं खोलते हैं। कौन खोलता है? ब्रह्मा। कौन खोलता है? ब्रह्मा। उद्घाटन के समय आप सभी होंगे तो देखने वाले होंगे या उद्घाटन करने वाले होंगे? कौन होंगे? साथी होंगे ना। कम से कम ताली बजाने के साथी तो होंगे ना। खुशियों की पुष्प वर्षा करेंगे ना। बाप दादा समय की समीपता को देख हर बच्चे का बाप दादा के साथ साथ क्या समीप संबंध है वो देख रहे। अति समीप कौन है और समीप कौन है? किसके समीप? बाप और दादा के समीप। बाप माना प्रजापिता राम वाली आत्मा के समीप और दादा माना कृष्ण वाली सोल दादा लेखराज ब्रह्मा के समीप कौन कौन है? अति समीप कौन है और समीप कौन है? और थोड़ा सा दूर से देखने वाले बच्चे कौन है? बच्चों का डबल भविष्य बाप दादा के सामने आता है। एक संगम युग का भविष्य अर्थात बाप समान बनने का भविष्य और दूसरा फर्स्ट जन्म का भविष्य अर्थात स्वर्ग का भविष्य। यहाँ समानता में समीप होंगे इस बात की समानता में, यहाँ संगम युग में पुरुषार्थ की समानता में समीप होंगे और वहाँ संबंध में समीप आवेंगे। जितना जितना यहाँ समीपता द्वारा सदा का साथ है उतना ही मूल वतन में भी ऐसी आत्मा साथ साथ है और स्वर्ग में भी हर दिनचर्या में संबंध का साथ है। जैसे यहाँ तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से खेलूं, तुम्ही से साथ निभाऊं, इस रूप में साथ साथ है ना, वैसे भविष्य में भी सवेरे से साथ साथ बगीचे में खेलेंगे, रास्ते करेंगे, पाठशाला में पढ़ेंगे और सदा ही मिलते रहेंगे और फिर साथ साथ ही राज्य करेंगे। चौदह छह अट्ठानवे की अगस्तवाणी का दूसरा पीठ। जैसे ब्रह्मा बाप सदा स्वराज्य करने वाले अर्थात स्वाधीन नहीं है लेकिन स्वाधिकारी थे, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले जिनों का सदा संकल्प साकार में है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ऐसे स्वराज्य करने वाले वहां भी साथ में राज्य करेंगे। यहाँ के नंबर वन रेगुलर और पंक्चुअल गार्डली स्टूडेंट वहां भी साथ साथ पढ़ेंगे क्योंकि ब्रह्मा बाप नंबर वन गार्डली स्टूडेंट है। कौन? ब्रह्मा और बाप। ब्रह्मा मान दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल और बाप मान शिव बाप नहीं प्रजापिता राम बाप। ये नंबर वन गार्डली स्टूडेंट यहाँ भी है और टीचर कौन है? सुप्रीम सोल गॉडफादर जो यहाँ इंद्रिय सुख के झूले में बाप के साथ साथ सदा झूलते हैं वो वहां भी झूले में साथ झूलेंगे। यहाँ कौन सा झूला है? अतीन्द्रिय सुख का झूला, खुशी का झूला, जो यहाँ अनेक प्राप्तियों की खुशी में नाचते हैं वो वहां भी साथ साथ है रास करेंगे। जो यहाँ बाप के गुण और संस्कार के समीप सर्व संबंधों से बाप का अनुभव करते हैं वो वहां भी रायल कुल के समीप संबंध में आवेंगे। तो बाप दादा हरेक के नैनों से दोनों प्रकार के भविष्य को देखते हैं। कौन कौन सा भविष्य? संगम युग में आने वाला स्वर्णिम भविष्य और अग्रिम जन्मों में आगे के जन्मों में आने वाला भविष्य दोनों को देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। क्या फर्स्ट जन्म कौन सा? जो फर्स्ट जन्म है वो दो प्रकार का है। कृष्ण जैसी आत्माओं के लिए और राम जैसी आत्माओं के लिए। राम जैसी आत्माएं कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने वाली होंगी और कृष्ण जैसी आत्माएं जन्म लेने वाली होंगी। दोनों ही फर्स्ट जन्म है। कृष्ण जैसी आत्माओं के लिए सतयुग में जन्म लेना फर्स्ट जन्म है। उनके त्रेता में 13 जन्म हो जाएंगे और रामदास जैसी आत्माओं के लिए संगम युग में स्वर्णिम काल में जो समय अभी आने वाला है वो फर्स्ट जन्म है। जहां सतयुग में उनके 9 जन्म हो जाएंगे, त्रेता में 12 जन्म होंगे तो 9 और 12 21 जन्म। तो बाप दादा हर एक के नैनों से दोनों भविष्य देखते हैं। फर्स्ट जन्म में आना ही फर्स्ट नंबर की प्रारब्ध है। क्या ये सतयुगी फर्स्ट जन्म में आ गए राधा कृष्ण की तरह और चाहे स्वर्णिम संगम भी जन्म में आ गए हैं राम की तरह। तो विदेशी बच्चे सब फर्स्ट जन्म में आएंगे ना? इतने सब फर्स्ट में आएंगे, फर्स्ट में कौन आएंगे? इस बात की पहचान विशेष एक बात से करो। वो कौन सी बात है? आज से अब तक अब भी विचारी और निर्विघ्न होंगे। क्या कहा? जब से पुरुषार्थ की शुरुआत हुई है, चाहे बेसिक नॉलेज में अथवा एडवांस नॉलेज में, आज से लेकर के अब तक अब भी विचारी बने रहे हूं। याद में विचार पैदा न हुआ हो और निर्विघ्न विघ्नों में फंसे हुए न हो, अगर विघ्न आए हुए भी हो तो विघ्नों को जंप दे करके पार किया हो, विघ्नों में उलझ के न रह गए हो, तो आए हुए विघ्नों को जंप देकर पार किया या विघ्नों के वश हो गए, वशीभूत हो गए। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, विघ्न तो सबके जीवन में आते हैं, माया सबके जीवन में आती है, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे, ये दोनों बातें अगर आज से अंत तक ठीक हैं। कौन सी दोनों बातें? एक तो अभी बिचारी याद रही हो, एक की याद, एक की याद में फिर कोई दूसरा कोई बीच में ना आके बैठ गया हो जो लंबे समय तक हमारी याद को खींच ले। अब भी बिचारी याद रही हो। और दूसरी बात, विघ्नों के आते हुए भी विघ्नों के ऊपर कंट्रोल किया हो, विघ्नों को पार किया हो, विघ्न विनाशक हो, विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहे हो, तो ये दोनों बातें अगर आज से अंत तक ठीक हैं तो फर्स्ट जन्म में साथी बन सकते हैं। ये सहज मार्ग है ना। अच्छा, कर्नाटक के बच्चे भी आए हुए हैं, ये भी भारत का विदेशी है, लंदन में सहज आ सकते हैं। क्यों? लंदन वाले सहज कैसे आ सकते हैं? क्योंकि विदेश में जो लंदन है वहां रहने वाले तो धनाढ्य हैं, पैसे की कमाई ज्यादा होती है, तो एरोप्लेन में बैठकर आराम से जल्दी आ सकते हैं। लेकिन देश में, अपने भारत देश में जो भारत का विदेश है कर्नाटक, वहां उतनी कमाई तो नहीं है, इसलिए ट्रेन में आना पड़ता है, तो ट्रेन में 3-4 दिन लग जाते हैं। तो बोला कि लंदन से सहज आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत मेहनत करके आते हैं, इसलिए मेहनत का फल प्रत्यक्ष फल बाप का मिलन हो गया। लगन वाले अच्छे हैं, बच्चों की लगन को देख बाप भी हर्षित होते हैं, सदा ऐसी लगन के दीप को बार बार अटेंशन के घी से अविनाशी रखना। कर्नाटक की तरफ दीप बहुत जगाते हैं, जैसे स्थूल दीपक जगाते रहे वैसे अब लगन का दीपक सदा जागता रहे। सब अपने को बाप के खुशनसीब बच्चे समझते हो ना। अच्छा, आज तो मिलने का दिन है, सभी सिकीले बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले बच्चों को, सदा स्वराज्य अधिकारी बच्चों को, तिलक और तख्त नशीन धारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात, ब्राह्मण जन्म की मुख्य पर्सनालिटी है प्योरिटी। कौन सी पर्सनालिटी मुख्य है ब्राह्मण जन्म की? प्योरिटी, सदा अपने को मन वाणी और कर्म में संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले अनुभव करते हो, मनसा के संकल्पों में पवित्र संकल्प चलते हैं, वाचा जो चलती है वो वाचा में बाबा के महावाक्य ही वाचा में से ज्यादा निकलते हैं, माना जो बाप दादा की वाणी है वो ही वाणी मुख से निकलती है, तो वाचा में संपूर्ण प्योरिटी इस प्रकार है। और कर्म में जैसे ब्रह्मा बाबा ने कर्म किए ऐसे ही कर्मों को हम फॉलो करने वाले हैं जीवन में, ऐसा अनुभव करते हो कि मनसा वाचा और कर्मणा हम प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की पर्सनालिटी है ही प्योरिटी। तो जो ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है वो अपने जीवन में अनुभव करते हो, जितनी प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी उतना ही विशेषात महंगाई जाएंगी। मुख्य पर्सनालिटी प्योरिटी है। ब्रह्मा बाप भी आदि देव वह पहला प्रिंस कैसे बने, किसके किसके लिए बोला? आदि देव और पहला प्रिंस, एक ही बात हुई या अलग अलग बातें हुई? अलग अलग बात। ब्रह्मा बाप तो एक है क्योंकि एक ही शरीर में दो सोल है, ब्रह्मा की भी सोल है तो बाप प्रजापिता की भी सोल है। जैसे कहा जाता है बाप दादा, तो बाप दादा कंबाइंड है ना, एक ही शरीर में दोनों कंबाइंड है, लेकिन दोनों की प्रारब्ध अलग अलग है। इसलिए कहा ब्रह्मा बाप भी आदि देव बाप पहला प्रिंस कैसे बने, आदि देव कौन बनता है, हैं? बाप बनता है या दादा बनता है? बाप बनता है आदि देव, तुम आदि देव है, पुरुष है, पुराण है, तुमस्य विश्वस्य परमं निधानम्, शास्त्र में भी उनकी स्तुति की गई है, इसकी आदि देव शंकर जी। और पहला प्रिंस कौन बनेगा, दादा लेखराज कृष्ण की सोल। तो ब्रह्मा बाप भी आदिदेव वह पहला प्रिंस कैसे बने, इससे प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर नंबर वन की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ गई। कौन सी प्योरिटी की पर्सनालिटी? मनसा में भी प्योरिटी के संकल्प चलना चलाने वाले और वाचा में भी जो बाप की ज्ञान की भाषा है उस ज्ञान की भाषा में ही सदैव रमण करने वाले, दूसरों को ज्ञान रतन देने वाले, मुख से कभी भी किसी आत्मा के प्रति पत्थर निकालने वाले नहीं, किसी की ग्लानी करने वाले नहीं, अगर मुख से किसी भी आत्मा के प्रति ग्लानी के बोल निकलते हैं कोई कैसी भी आत्मा है गिरे हुए तो सब है। सभी ब्राह्मण पुरुषार्थी हैं ऊंचा उठने के लिए, तो ग्लानी फिर किसकी करना, सबके लिए मुख से श्रेष्ठ रत्न निकालने वाले। और ब्रह्मा जैसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी, तो ऐसी पर्सनालिटी की लिस्ट में आए स्पिरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर नंबर वन की पर्सनालिटी की लिस्ट में आ जाएंगी। तो फॉलो फादर है ना, संस्कार ही पवित्रता के हैं। ब्राह्मण जन्म के संस्कार ही पवित्र हैं, इसलिए आजकल के ब्राह्मणों द्वारा ही किसी भी प्रकार की शुद्धि व श्रेष्ठ कार्य कराते हैं। ये यादगार चली आ रही है, कोई भी श्रेष्ठ अनुष्ठान कराएंगे तो किसके द्वारा कराएंगे? ब्राह्मणों के द्वारा कराएंगे। ये यादगार तो अभी भी चल रही है, लेकिन ये यादगार है किसकी? हम बच्चों की ही ये यादगार चल रही है भक्ति मार्ग में, क्योंकि उनको महान समझते हैं। श्रेष्ठता ही पवित्रता है। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन के निजी जन्म के संस्कार अपने में अनुभव करते हो, 14-6-98 की व्यक्तवाणी का तीसरा पीस, पवित्रता जन्म का संस्कार बनी है। जन्म सिद्ध संस्कार जब से जन्म लिया तब से लेकर के अब तक, ब्राह्मण जीवन में जन्म तो लिया ना, जन्म सिद्ध अधिकार पवित्रता का मिला है, संस्कार ऐसे बने हैं, संस्कार है, ये जन्म के संस्कार स्वतः ही कार्य करते हैं। कौन से जन्म के संस्कार? प्योरिटी के। कभी स्वप्न में भी अपवित्रता के संकल्प नहीं आए, इसको कहा जाता है प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले। इस पर्सनालिटी के कारण ही विश्व की आत्माएं आज तक नमस्कार कर रही है। कौन सी प्योरिटी की पर्सनालिटी बताई? इस स्वप्न में भी इन प्योरिटी के स्वप्न न आए, को न जान के भी नमस्कार करते, साधारण को नहीं नमस्कार करते हैं। आप असाधारण आत्माओं को नमस्कार करते हैं। तो ऐसे वाहन बने हो ना, माताएं सब नष्टो मोहा हो, जब बाप के साथ सर्व संबंध जोड़ लिए, तो और किसमें मोह हो सकता है क्या? बिना संबंध के कोई में मोह नहीं हो सकता। कोई के साथ संबंध जुटा हुआ है तो उसमें मोह होगा। संबंध के आधार पर संघ में आते हैं, जिसके संघ में आते हैं चाहे दृष्टि के द्वारा, चाहे वाचा के द्वारा, चाहे कर्मेंद्रियों के द्वारा, जिसका भी संघ करते हैं उससे संबंध जुट जाता है, और जिसके साथ संबंध जुट जाता है उसमें मोह पैदा होता है। बिना संबंध के कोई मोह पैदा नहीं हो सकता। तो सदा ये याद रखो कि जब और कोई भी संबंध ही नहीं है तो वो कहां से आएगा। क्या समझना है माताओं को, ये जितने भी देह के संबंध भी है वो सब हमारी गीता पाठशाला के बच्चे हैं, परमात्मा बाप के बच्चे हैं। बस इतना ही संबंध है। ये हमारी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो जब कोई से संबंध ही नहीं तो वो कहां से आएगा। का बीज है संबंध। जब बीज कोई काट दिया तो बिना बीज के वृक्ष कैसे पैदा होगा। आप माताओं के सारे संबंध एक बाप से हो गए। अभी तक मोह होता है, कोई भी आत्मा के साथ मोह जुटता है तो इस स्थिति होता है कि कुछ तोड़ा है और कुछ जोड़ा है, दोनों तरफ है। देह का संबंध कुछ तोड़ा है और कोई पूरी आत्मा के साथ कुछ जोड़ भी दिया है। अभी संगम हुए ब्राह्मणों के लिए संबंध तोड़ने का चरण चल रहा है, मनुष्य आत्माओं के साथ या नए नए संबंध जोड़ने का चरण चल रहा है, तोड़ने का चरण चल रहा है। कुछ लोग से सभी आत्माओं के साथ संबंध तोड़ते जाए। नए संबंध जोड़ने का टाइम नहीं है। अगर जोड़ लिया तो 100 गुना मोह पैदा हो जाता है। तो अगर अभी तक भी कोई से मोह पैदा होता है तो इससे सिद्ध हो गया कि तोड़ा भी है और जोड़ा भी है, दोनों तरफ है। तो दो तरफ वाले को न वह मंजिल मिलती है दुनिया वाली, क्योंकि दुनिया तो नष्ट हो जाएगी, उससे कोई प्राप्ति नहीं होने वाली है। न वह मंजिल मिलती है और न ये किनारा मिलता है, ईश्वरीय दुनिया का किनारा भी नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। तो ऐसे तो नहीं होना, सब नष्ट हो रहा होना, फिर कभी शिकायत नहीं करना कि क्या करें हमें तो बंधन है, ये बंधन कटता ही नहीं। जहाँ वो नष्ट हो गया तो स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। नष्ट हुआ स्मृति लब्धा हो जाएंगे। फिर कटता नहीं, मिटता नहीं, ये भाषा खत्म हो जाती है। सब प्रकार की प्राप्ति के स्वरूप हो जाते हो। सदा मन बना भव रहने वाले मन के बंधन से भी मुक्त रहते। उन्हें किसी प्रकार का मन का बंधन सताए नहीं सकता। विदेशी भाई बहनों के साथ बाप दादा की मुलाकात, सभी बाप के सदा डियरेस्ट और डियरेस्ट हो, क्या समझते हो अपने को? अपनी कल पहले की प्रारब्ध स्पष्ट सामने है। डबल विदेशी आत्माओं का नंबर वन इस संगम युग के विशेष पार्टों में विशेष पार्ट जुड़ा हुआ है। डबल विदेशी बच्चों को बाप दादा द्वारा विशेष वरदान है। कौन सा वरदान है? विदेशी बच्चे जब से जन्म लेते हैं तब ही पहली घड़ी में ही बाप दादा द्वारा विशेष वरदान सदा क्षेत्र छाया के अंदर रहने का मिल जाता है। ये विदेशी बच्चों को विशेष लिप्त है। विदेशी बच्चों की पहचान तो जान ली। बेहद में विदेशी कौन है? हाँ, जो बेसिक नागरिक में आते हैं तो लौकिक के संबंध से दिल से निकाल दिए जाते हैं, वो विदेशी हुए। फिर एडवांस में आते हैं तो अलौकिक ब्राह्मण परिवार वालों के दिल से भी निकाल दिए जाते हैं। तो नंबर वन विदेशी आत्मा रहे हैं, उनको कहा है डबल विदेशी आत्मा। संगम युग के विशेष पाठधारी विशेष पाठ से आपका नाता जुड़ा हुआ है। इनका विशेष वरदान क्या बताया? जब से जन्म लेते हैं ज्ञान में तब से ही हर घड़ी और पहली घड़ी से ही बाप दादा द्वारा उनको विशेष छत्र छाया का वरदान मिलता है। क्या बाप दादा की डायरेक्ट छत्र छाया के नीचे रहते हैं? डबल विदेशी बने तो छत्र छाया मिली है। जैसे भारत के शास्त्रों में दिखाया है, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल में जन्म होते हुए भी जब नदी पार किया तो सांप ही सृष्टि का साधन बन गया। तो विदेशी बच्चों को वरदान है कि कैसे भी वातावरण अशुद्ध है, कैसी भी परिस्थितियां हैं, लेकिन फिर भी बाप की छत्र छाया बच्चों को सदा सिर्फ रखती आई है और अंत तक सिर्फ रखेगी। दूसरा, साथ साथ विदेशी बच्चों को बाप के साथ साथ के अनुभव की विशेष मदद है। क्या बुद्धि योग से बाप दादा के साथ साथ रहने की विशेष मदद है? क्यों, कैसे? और दूसरे तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को मदद कैसे नहीं है? आपको ये विशेष मदद कैसे है? क्योंकि आपने उस साकार बाप को विशेष रूप से ज्ञान के द्वारा पहचान लिया। तीसरी बात, विदेशी बच्चों को विशेष रूप से जन्मते ही सेवा के संस्कार का सहयोग है। जब से जन्म लेते हैं, जब से अपनी पहचान होती है कि हम बाप के विशेष डबल विदेशी बच्चे हैं, तब से ही उनके सेवा के संस्कार पक्के हो जाते हैं। ये सेवा के संस्कार का सहयोग विशेष मिला हुआ है, ये भी विशेष ड्रामा पाठ अनुसार सहयोग मिला हुआ है। चौथी बात है, याद की यात्रा में सहज ही अनुभवों की खान प्राप्त होने का वरदान विदेशियों को मिला हुआ है। तो बताओ आप कितने लकीएस्ट हो गए, बाप दादा के संगम भी विशेष अमूल्य रत्न हो, जिन अमूल्य रत्नों को बाप दादा विश्व में सैंपल के रूप में रखेंगे। इसलिए सदा बाप और सेवा के सिवाय कोई भी याद बाप याद न रहे। क्या क्या याद रहे? बाप याद रहे और बाप की सेवा याद रहे। साथ का अनुभव करते हो, कब करेंगे साथ का अनुभव? जब डबल लाख लगा हुआ होगा। कौन सा डबल लाख? बाप की याद और बाप की सेवा का डबल लाख। शक्ति सेना क्या समझती है? शिव और शक्ति सदा साथ है ना, नाम ही है शिव शक्ति। 14/5/98 की अध्यक्षवाणी का चौथा पेज। तो जो नाम है शिव शक्ति, शिव पांडव तो नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? शिव पांडव कहा जाता है। तो नाम क्यों पड़ा शिव शक्ति? नाम किस आधार पर पड़ता है? कोई ऐसा काम किया है ना प्रैक्टिकल में, सदा साथ का काम किया है माताओं ने बुद्धियोग से, बुद्धियोग से सदा बाप के साथ रही है, तो ये नाम पड़ा है शिव शक्ति। जो शिव की शक्ति है वह याद के सिवाय रह नहीं सकती। कभी भी कोई कार्य करो तो सदा ये सोचो कि विश्व सेवा के अर्थ निमित्त मात्र ये कार्य कर रहे हैं। इसी को ही कमल फूल के समान कहा जाता है। तो सभी कमल फूल के समान कार्य करते न्यारे और बाप के प्यारे बन करके रहते हो। कार्य में बुद्धि उलझ तो नहीं जाती है? कोई काम में बुद्धि आसक्त तो नहीं हो जाती है? पांडव कमल फूल के समान है ना? ये लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है। पांडवों को लौकिक कार्य करना पड़ता है, पेट की कमाई के लिए धंधा करना पड़ता है। तो ये लौकिक कार्य भी अनेक आत्माओं को संपर्क में लाने का साधन है, क्योंकि ईश्वरीय सेवा के लिए संपर्क तो बनाना ही पड़ता है। कन्याएं माताएं तो घर में रहती हैं, उनका तो बाहरी दुनिया वालों से इतना संपर्क संसर्ग नहीं होता है, पांडवों का होता है। तो यही बना बनाया संपर्क मिल जाता है। اس لیے ڈبل کار کے لیے ڈائریکشن دیے جاتے ہیں. کس کو؟ پانڈووں کو یا ماتاؤں کنیاؤں کو؟ پانڈووں کو ڈبل کاری کے لیے ڈائریکشن ملا ہوا ہے کہ لوکک روپ میں پیٹ کا دھندا بھی کرنا ہے اور ایشوریہ سیوا بھی کرنی ہے, ڈبل سروس کرنی ہے. اور کنیاؤں ماتاؤں کو چھٹکارا دے دیا. کیا کنیاؤں ماتاؤں کے لیے بولا ہے؟ پیٹ کے لیے کنیاؤں ماتاؤں کو ماتھا نہیں مارنا ہے. کنیاؤں کے لیے تو نوکری دھندا کرنے کے لیے منع ہی کر دیا. تو ڈبل کاری کے لیے ڈائریکشن پانڈووں کو دیے جاتے ہیں. اور جیسے سمپرک آگے بڑھاتے جائیں گے, سمپرک کی آوشیکتا نہیں رہے گی, سوتہ ہی سمپرک بنتے جائیں گے. سمپرک اور سمبندھ میں انتر ہوتا ہے. سمبندھ ہوتا ہے کلوز کانٹیکٹ. کلوز کنیکشن کو کہا جاتا ہے سمبندھ, اور سمپرک تھوڑا دور دور کا ہلکا ہلکا ہوتا ہے. تو سمپرک کی آوشیکتا نہیں رہے گی اور لوکک پورا سوتہ ہی ہو جائے گا. کیسے؟ آگے چل کے اخباروں میں, ٹی وی میں, ریڈیو میں, انٹرنیٹ میں, چاروں طرف سے باپ کی پرتکشتا کا آواز بلند ہوگا. سنسار میں جن کے سامنے باپ کی پرتکشتا کا آواز بلند ہوگا, ان کی بدھی میں باپ کے سمیپ آتمائے کون کون ہے, باپ کو کس نے پہچانا ہے اور کہاں تک پہچانا ہے, یہ بات بدھی میں آ جائے گی. تو جن کا ابھی سمپرک جٹا ہوا ہوگا وہ سہج ہی ان آتموں کو اٹھا لیں گے. تو اس لیے ڈبل کاری کے لیے پانڈووں کو ڈائریکشن دیے جاتے ہیں. آپ سہج ہی الوکی کاری کے نمت بن جائیں گے. سبھی کی یہ اسٹیج آتی ہے اور سدا ہے. تو یہ بھی سیوا کا چانس سمجھ کر کے کاری کرو. کون سا کاری؟ پانڈو جو لوکک سیوا کرتے ہیں وہ سیوا بھی ایشوری سمپرک میں سمبندھ میں لانے کا سادھن ہے. آج نہیں تو کل وہ سمپرک میں آئی ہوئی آتمائیں ایشوری سیوا لینے کی حقدار بن جائے گی. آپ سے ہی ایشوری سیوا لیں گی کیونکہ ان کا آپ سے کنیکشن ہے, آسٹریلیا پارٹی کے ساتھ. کون سی پارٹی کے ساتھ؟ آس مانا بیٹھے بیٹھائے. سنسکرت میں آس, آسن, آسین کہتے ہیں نا. کرسی پر آسین ہو جائیے مانا بیٹھ جائیے. آسن, آسن بچھا کر بیٹھ جائیے. تو آس مانا بیٹھنا, پری مانا تھالی, آسمان بیٹھنا, ٹرے مانا تھالی, اور لیا مانا لے لیا. माना घर बैठे बैठाए जिन्होंने ज्ञान रत्नों का भरा हुआ थाल ले लिया, बाग दौड़ नहीं करनी पड़ी भगवान को ढूंढने की, उनको कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वासी। कहाँ के वासी? ऑस्ट्रेलिया वासी। उनसे बोला, ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। क्या? जिनको घर बैठे भगवान मिला, उन ऑस्ट्रेलिया वालों ने बाप को प्रत्यक्ष करने का संकल्प साकार में बहुत अच्छा लाया है। जो अनुभव किया वो अन्य आत्माओं को भी कराने का जो प्रैक्टिकल रूप दिखाया वो बहुत अच्छा किया। इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर वन में है। किस अनुभव के कारण नंबर वन में आ गए ऑस्ट्रेलिया वाले? हाँ, इस विशेषता के कारण ऑस्ट्रेलिया का नंबर बाप दादा के पास नंबर वन में है। जैसे गायन है, भारत के लिए घर घर मंदिर है। क्या? गली गली में गीता पाठशालाएं होंगी तो गली गली में क्या हो गए? मंदिर हो जाएंगे। ऐसा गायन भारत के लिए है, विदेशों के लिए ऐसा गायन नहीं है। भारत के लिए घर घर मंदिर है, वैसे ऑस्ट्रेलिया वालों के लिए घर घर में, अर्थात जो भी आने वाले हैं, ये सेवा का सबूत देने में, घर घर को मंदिर बनाने में नंबर वन आ रही है। कौन? जिनको घर बैठे भगवान मिला वो। तो आप सब कौन हो गए? मंदिर में रहने वाली चैतन्य मूर्तियां हो गए। आप सब समझते हो हम नंबर वन हैं? इस बात को समझते हो कि हम भी नंबर वन हैं? बाप को भी खुशी है। ऐसे ही आपको देख करके सब फॉलो करें। ऑस्ट्रेलिया में जब प्रत्यक्षता होगी तो ऑस्ट्रेलिया में क्यों सबसे पहले लगेगी? क्या क्या वरदान मिला? जिनको घर बैठे भगवान मिला, घर बैठे भगवान के प्राप्ति की अनुभूति कर ली, उनको ये वरदान मिल गया कि जब बाप की प्रत्यक्षता होगी संसार में तो ऑस्ट्रेलिया वालों के यहाँ सबसे पहले क्यों लगेगी। जैसे बाप बच्चों में उम्मीद रखते हैं तो आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसी आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रुप विदेशी ग्रुप बताया। ऑस्ट्रेलिया विदेश है कि स्वदेश है? स्वदेश है, विदेश है। ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा देश है, महाद्वीप है, जो समंदर के सबसे बाद में ऊपर आया है, आज से 300 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में कोई जनरेशन है ये मनुष्यों को पता भी नहीं था। 300 वर्ष से ऑस्ट्रेलिया की ईजाद हुई तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ये महत्व की बात बताई। आप बच्चों में उम्मीद बाप रखते हैं, आप सभी उम्मीदों के सितारे हो। चारों ओर ऐसे आवाज फैलाओ जो ऑस्ट्रेलिया का आवाज भारत में पहले पहुंच जाए। क्या कहा? आवाज फैलाने का काम पहले कौन करेंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले, जिन्होंने घर बैठे भगवान को प्राप्ति करने की अनुभूति कर ली, उनको ये वरदान मिला हुआ है कि वो आवाज फैलाने के निमित्त बनेंगे। और आवाज भारत में उनका पहले पहुंचेगा। भारतवासी जो कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, भगवान को नहीं पहचानते हैं। जहां भगवान का जन्म होता है वो धरणी में रहने वाले भगवान को नहीं पहचानते हैं, और दूर दराज ऑस्ट्रेलिया वाले घर बैठे भगवान को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसी अनुभूति करते हैं। उनका आवाज भारतवासियों के समीप पहुंचेगा, क्योंकि भारतवासियों की ये टेंडेंसी है कि वे विदेश के द्वारा ही कोई बात को स्वीकार करते हैं। भारत में कोई नई ईजाद होगी तो नहीं मानेंगे, नई बात की खोज होगी तो नहीं मानेंगे सहज रीति। लेकिन उसी बात को जब विदेशी छप्पा लगाएंगे तो मान लेंगे। तो भारत में भगवान आया, भारतवासियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वालों ने भगवान को पहले पहचान लिया। प्रैक्टिकल में भी देखिए, एडवांस ज्ञान पहले उत्तर भारत वालों ने पकड़ा या दक्षिण भारत वालों ने पकड़ा? जिन दक्षिण भारत वालों को भारत का विदेश का है, किसने पकड़ा? उत्तर भारत में भगवान आया तो, लेकिन उत्तर भारत वालों की भीड़ लगना नहीं शुरू हुई। किनकी भीड़ लगना शुरू हुई? दक्षिण भारत के कर्नाटक वाले, आंध्र प्रदेश वाले, तमिलनाडु वाले, ये पहले वहां जाकर के भीड़ लगाना शुरू कर दिया और पहचान लिया। इतनी इतनी दूर से चक्कर काट करके जा रहे हैं, और वहां के जो रहने वाले हैं, जो गंगा के किनारे रहने वाले हैं, उनको गंगा के महत्व का, ज्ञान गंगा के महत्व का पता ही नहीं। तो बोला,